Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय निताय गौर सुंदर की। आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान बुना के तीसरा दिन श्री चैतन्य चरित अमृत कथा में। चैतन्य चरित अमृत, इसका अर्थ क्या है? चैतन्य, चैतन्य कहते हैं कॉन्शियसनेस को, चेतना, और अमृत कहते हैं इमॉर्टलिटी को, इमॉर्टल, दी इमॉर्टल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग बींग। श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क में चेतन चरित अमृत पे 5 लेक्चर दिए थे और लेक्चर का शुरू किया था कि चेतन चरित अमृत का अर्थ क्या है। चेतन चरित अमृत, इसका अर्थ क्या है? और बहुत सुंदर शब्दों में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, चेतन चरित अमृत देन मीन्स the character of the living force in immortality। ये जो 3 दिन से हम सुन रहे हैं, ये हमारा लिविंग फोर्स कौन है? हम हैं जीव आत्मा, और हमारा जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो इमॉर्टल है, मतलब अविनाशी है, नित्य है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। चैतन्य चरितमृत पढ़ने से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको हमारे अमृत, हमारे अमर, हमारे नित्य, हमारे इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, हमारा जो करैक्टर है उसका हमको ज्ञान होगा। चैतन्य चरितमृत से हमको हमारे अमृता का, अमृता का मतलब जो कभी मरता नहीं है, और अमृत का मतलब है विष छोड़ के अमृत पियो। दुनिया में विष पी रहे हैं सब लोग, और ये अमृत है। विष छाड़ी अमृत पियो। माया के बंधन में लोग विष पी रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु अमृत पिलाने के लिए आए हैं। किसको? जीव को। तो ये चैतन्य चरित अमृत है, ये शब्द का अर्थ है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का अमृत है इसके अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन भागवत आदि पुराणों में है, मुख्य रूप से भागवत में है, लेकिन अन्य पुराणों में, हरिवंश पुराण में है, पद्म पुराण में है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार और लीलाओं का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और 71 चतुर्युगियां होती हैं। चतुर्युगी का अर्थ क्या है? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये 4 युग। ये 4 युग 71 टाइम जब घूमेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ये घड़ी है ना, ये 12 घंटे हैं हमारी घड़ी में, दिन में 12 घंटे, रात में है, ब्रह्मा जी की घड़ी के में 14 घंटे हैं। एक घंटा एक मनु होता है और दिन में 14 मनु होते हैं और 14 मनुओं के नाम लिखे हुए हैं। इस वक्त हम 7वें मनु के शासन में जी रहे हैं। इस वक्त जो रूल कर रहा है वो है 7वां मनु। अब 7 मनु और आएंगे। इस 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। किसका बेटा है? विवस्वान का, सूर्य देव का बेटा है वैवस्वत, इसका नाम है। और भगवत गीता में इस मनु को भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये वो विवस्वत मनु है। 7वां मनु चल रहा है। अब 7 और मनु आने वाले हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में हर मनवंतर में, हर मनवंतर का मतलब है, मनवंतर को आप ऐसे समझ लीजिए, आपने आपके देश में यहां 5-5 साल के बाद इलेक्शन होती है ना, अभी इलेक्शन होने वाली है, फिर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई मिनिस्टर होगा, ऐसे होता है ना। तो ब्रह्मांड के संचालन में 71 चतुर्युगियों में 14 बार इलेक्शन होती है, 14 times, और एक मनु चुना जाता है, वो अपना काम पूरा करेगा 71 चतुर्युगियों तक, तब वो मनु चला जाएगा, तब दूसरा मनु सिलेक्ट होगा आएगा। जब एक मनु आता है तो उस मनवंतर में एक भगवान का अवतार होता है। इंद्र आदि देवता आते हैं। ये भी समझ लो कि इंद्र किसी आदमी का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, इंद्र कोई भी हो सकता है। आने वाले मनवंतर में, अब नेक्स्ट जो मनवंतर आएगा उसमें बलि महाराज इंद्र बनेंगे। बलि महाराज, वामन देव ने उनको वरदान दिया था, अब वो इंद्र बनने वाले हैं नेक्स्ट मनवंतर में। तो इस वक्त में जो मनु चल रहा है, जो शासक चल रहा है मनु का, वो भगवान जो अवतार लेता है वो चुनता है कि इंद्र कौन बनेगा, सप्तऋषि कौन बनेंगे। इलेक्शन नहीं होती है, वोट से नहीं चुना जाता है, वोट से चुना जाता है तो सब बेईमानी हो जाती, देयर इज नो इलेक्शन देयर। कौन चुनता है? भगवान चुनता है। इस मनवंतर का कौन सा भगवान अवतार है? वामन देव। सुबह ये मनवंतर चल रहा है। एक ब्रह्मा के दिन के अंदर 28वीं चतुर्युगी, 28th साइकिल ऑफ 4 युग, उसके द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। ठीक है, अवतार भगवान के बहुत आते हैं। भगवान के अवतार कहां से आते हैं? विष्णु से आते हैं। कौन से विष्णु से आते हैं? कारण दक्ष, खीरो दक्षाई विष्णु से आते हैं। कौन से विष्णु से आते हैं? खीरो दक्षाई, खीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, खीर उदक साई, खीर का मतलब दूध, मिल्क, उदक लिक्विड, साई सोने वाला, वो विष्णु जो खीर सागर में सोता है, सब अवतार वहां से आते हैं। और समय समय के, हर मनु के समय में आता है। और काय के लिए अवतार आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में। और इंसिडेंटली इस बार जब 5000 वर्ष पहले जो शेड्यूल अवतार था, स्केड्यूल जो टाइम से अवतार आना था, उसके आने का समय और भगवान श्री कृष्ण के आने का समय एक हो गया। एट वन टाइम स्केड्यूल जो अवतार आना था उसको भी आना था, श्री कृष्ण के आने का भी समय हो गया था। इसलिए जितने भी अवतार हैं वो सारे श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पुरी में बोला, रूप गोस्वामी नाटक लिखना चाह रहे थे, ड्रामा लिखना चाह रहे थे कृष्ण के जीवन के ऊपर, वृंदावन में कृष्ण का जीवन, गोपियों और राधा के साथ कृष्ण का जीवन मथुरा में, और कृष्ण की लीला द्वारका में सत्यभामा रुक्मणी आदि रानियों के साथ। रूप गोस्वामी वृंदावन से निकले, बंगाल से होते हुए ओडिशा में एक गांव में रात को सोए, गांव का नाम था सत्यभामापुर। और जब रात को सोए तो एक सुंदर, बहुत सुंदर देवी प्रकट हुई उनके स्वप्न में, इन ए ड्रीम। बोला, मेरा वृंदावन का नाटक और द्वारका नाटक अलग लिखो, दोनों को साथ मत लिखो, डोंट राइट टू वन ड्रामा टुगेदर ऑफ वृंदावन लीला एंड द्वारका लीला। रूप गोस्वामी उठा, कौन हो सकता है, सत्यभामा कह रही है कि द्वारका की लीला वृंदावन से अलग लिखो। रूप गोस्वामी सोच रहे हैं, एक दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के पास आते हैं। रूप गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ पुरी में। जैसे मिलने आए चैतन्य महाप्रभु, कहा, रूपा डोंट टेक कृष्ण आउट ऑफ वृंदावन, नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत ले जाओ। वसुदेव कृष्ण, वसुदेव कृष्ण युग अवतारी है, वो भक्त वो असुरों का संहार करेगा, वो वृंदावन से बाहर जाता है मथुरा और द्वारका में। तब रूपा गोस्वामी ने यह निर्णय किया और एक जो लिख रहे थे नाटक ड्रामा उसको दो भाग कर दिए, वृंदावन ललित माधव और द्वारका का विगत माधव, दो ड्रामे अलग लिख दिए बाद में। तो कृष्ण जब अवतार लेते हैं, अंश भागे ना, सारे जितने भी अंश अवतार हैं भगवान के वो सब कृष्ण के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण केवल दो ही काम करते हैं, एक काम करते हैं भक्तों के साथ सखा वात्सल्य, दास्य सखा वात्सल्य और मधुर्य रस का रस आस्वादन। अपने साथ अपने सारे परिकर लाते हैं, परिकर मतलब एसोसिएट, कौन एसोसिएट, दास अपने साथ में लाते हैं और सर्वेंट अपने साथ में लाते हैं, जिनके साथ रक्तक पत्रक आदि भगवान के सेवक हैं। सखा साथ लाते हैं 12 गोप जो भगवान के सखा हैं, 12 द्वादश गोप गोपाल कृष्ण के साथ घूमते हैं, एक सिर्फ गोपाल है जो जो ब्राह्मण है, उसको मनसुखा कहते हैं, उसको मधुमंगल कहते हैं, वो एक ब्राह्मण है केवल। ये 12 सखा हैं भगवान के। और फिर यशोदा माँ को साथ लाते हैं, नंद बाबा साथ आते हैं वात्सल्य रस के लिए, और गोपियां और राधा रानी आदि माधुर्य रस के साथ लाते हैं। और ये क्यों करते हैं रस आस्वादन, ताकि लोगों को दुनिया को ये पता लगे कि भगवान के साथ स्पॉन्टेनियस लव, अपने आप राग भाव से भगवान से प्रेम करना हम सीखे, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण, राग भक्ति के प्रचार के लिए और अपने भक्तों के रसास्वादन के लिए कृष्ण अवतार लेते। उसी ब्रह्मा जी के एक दिन की 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द कलयुग, वो कहते हैं प्रथम चरणे, कलयुग के पहले चरण में, एक युग के चरण जो कलयुग का है, पहला चरण वो 36,000 साल तक चलेगा, पहला चरण। कलयुग का टाइम कितना है, 432,000 साल। फोर लैख, लैख मीन्स लैख, लैख बोलते क्या बोलते हैं, 10 मिलियन, नहीं 10 मिलियन नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, 1 लैख इज इक्वल टू 100,000, 100,000 ईयर्स, सो 400,000, 4 लाख, 32,000 ईयर्स कलयुग का एज है। फर्स्ट 36 ईयर उसको बोलते हैं पहली संध्या, पहली संध्या। उस 36 ईयर में फर्स्ट 4 ईयर, 4 साल बीते कलयुग के, 4 साल एंड सम ईयर्स चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते, ओनली वंस इन ए डे ऑफ ब्रह्मा। जैसे कृष्ण सब अवतार उसके अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी सब अवतारी, सर्व अवतारी सार श्रोमणि, उसके अंदर भी सब अवतार प्रवेश होके आते हैं। लेकिन दूसरे जब भी कोई अवतार आते हैं तो अपने साथ में सेना लाते हैं असुरों के संहार करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त पार्षद लेके आते हैं नाम संकीर्तन के लिए। तो एक बात सिर्फ पहली ये जानना है, कृष्ण का अवतार केवल एक बार ब्रह्मा के दिन में होता है, लेकिन विष्णु के कई अवतार होते हैं, अनलिमिटेड। विष्णु इस संसार के संचालन के लिए है, मेंटेनेंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज बाय विष्णु, क्रिएशन इज बाय ब्रह्मा, और संहार शंकर जी करते हैं। ये 3 अवतार तो है, ये हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं। अब जब कृष्ण आए, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1-2-4 मिनट के लिए। भगवान नरसिंहदेव का जब अवतार हुआ प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, तो नरसिंहदेव को बहुत क्रोध था। अभी होली आ रही है ना, होली का एक दिन के मनाने का है कारण, होली हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, और उसके पास एक वरदान था, एक साड़ी थी जो आग से नहीं जलती थी, और प्रहलाद को गोद में लेके आग में जलाने के लिए बैठी थी, हवा के झोंके से साड़ी आ गई प्रहलाद के ऊपर और होली मर गई, होलिका जल गई। तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान नरसिंह देव ने मारा तो नरसिंह देव बहुत क्रोध में थे, उग्र नरसिंह क्रोध में थे, और जब नरसिंह देव क्रोध में थे भगवान शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, वरुण आए, लक्ष्मी आई, ऋषि आए, नारद आदि, लेकिन दूर खड़े हैं, कोई नजदीक नहीं जा रहा है। इतना फेरोशियस, इतना उग्र रूप था नरसिंहदेव का, किसी को हिम्मत नहीं, और नोबडी वाज डेयरिंग टू गो नियर टू नरसिंहदेव। लक्ष्मी देवी को किसी ने कहा आप जाइए, आपका पति देव है, शांत कीजिए। माता जी ने साड़ी ठीक किया, 2 कदम आगे गई, बोला आज मूड ठीक नहीं है, आज नजदीक जाना संभव नहीं है। लक्ष्मी वापस लौटी, तब सब देवताओं ने प्रार्थना की प्रहलाद को, आप जाइए, आपके लिए आए हैं अवतार लेकर, शांत कीजिए। एंड प्रहलाद 5 साल का छोटा सा बच्चा, विदाउट फियर ही नरसिंह देव के सामने जाके दंडवत प्रणाम किया, और नरसिंह देव के हृदय में इतना प्रेम, इतना प्रेम भक्त के लिए हुआ, ऐसे उठाया गोद में, और गोद में उठा के बिठाया नरसिंह देव ने प्रहलाद को अपनी गोद में, और फिर जबान से उसको चाटने लगे। जब चाट रहे थे तो नरसिंह देव ने देखा मुझे बहुत बड़ा सुख मिल रहा है, मेरा भक्त मेरे गोद में बैठा है, जैसे माँ बाप के बेट में गोद में बेटा बैठता है कितना अच्छा लगता है। हाँ, अपने बेटे को आप उठाते हो गोद में कितना अच्छा लगता है, यू लाइक इट वेरी मच। हाँ, लेकिन नरसिंह देव ने प्रहलाद की तरफ देखा, हाँ प्रहलाद ही इज मोर हैप्पियर देन मी। नरसिंह देव ने कहा मुझसे तो प्रहलाद को ज्यादा सुख मिल रहा है, चाइल्ड इज मोर हैप्पी, आप ये बताइए कि बच्चे को आप में गोद में उठा के सुख लेते हैं कभी एक आधा टाइम, और बच्चा आपकी गोद में 10 बार दिन में चढ़ना चाहता है, ये सच है कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? आपका मन आता है थोड़ी देर के, हाँ हाँ बेटा ऐसे, लेकिन बेटा हर बार आपकी गोद में चढ़ना चाहता है, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? और कोई मेहमान आएगा तब जबरदस्ती आके चढ़ेगा, उसको उठो उठाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, चाहता है कि इसके साथ मेरा संबंध है, मुझसे ये प्रेम करता है। और आप नहीं करोगे तो वो याद करके बैठा, बड़ा होगा तब आपको बताएगा, इसलिए उठा लिया करो, नहीं तो बड़ा होगा तब कहेगा, उसको मन में ये लकीर आ जाएगी। सो नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद को सुख तो मुझसे ज्यादा मिल रहा। नरसिंह देव ने ऐसे मन में संकल्प किया, अब जब भी अवतार लेना होगा ना, तो मेरे अपने एक किसी भक्त को माता पिता बनाऊंगा, उसकी गोद में खेलूंगा, मैं भी इस सुख का आनंद लूंगा। और नरसिंह देव ने देखा, चलो मैं देखूं मेरा माता पिता कौन है, गोद में बैठूं, पीछे देखा खंभा पिलर, अब पिलर भी गोद में कैसे बैठेगा नरसिंह देव? आफ्टर नरसिंह देव, जब भी भगवान ने अवतार लिया, ही ऑलवेज अरेंज इज लिबरेटेड डिवोटीज इन ए वात्सल्य भाव। माता पिता भगवान ने पहले भेज दिए और फिर भगवान आए, उसके बाद हमेशा ऐसा हुआ है नरसिंह देव के पास, आप देख लेना। राम अवतार में कौशल्या को माता बना दिया, एक भी नहीं तीन तीन माताएं बना दी, कौशल्या भी माता हो गई, केकई भी हो गई, और सुमंत्रा भी माता हो गई। महाराज दशरथ पिता के रूप में बड़ा प्रेम किया, इतना प्रेम किया दशरथ ने कि राम के जाने के बाद आंखों से कुछ नहीं देखा। लास्ट टाइम ही सा राम, रथ के ऊपर जाते हुए राम को देखा, उसके बाद आंखों से और कुछ नहीं देखा था, और प्राण ही दे दिए बस। ऐसा अपने भगवान के लिए ऐसा पिता बहुत दुर्लभ मिलता है। और फिर कुछ मित्र भी राम जी के बने, पहला मित्र बना निषाद राज गुह्य। निषाद कहां से उत्पत्त हुए आपको मालूम है? निषादों की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेण महाराज, द्रु महाराज के वंश में एक महाराज हुआ वेण। राजा ऐसा था, लोगों को बोलता था राजा में भगवान निवास करता है, भगवान की पूजा बंद, मंदिर बंद, मेरी पूजा करो। ऋषियों ने कहा ये तो आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम है ना भगवान होता है, भगवान का आवेश होता है ना राजा में, तो मैं राजा हूं ना, मेरी पूजा करो। ऋषियों ने कहा तुम्हें राजा भी हमने बनाया है, तुम्हें उतार भी सकते हैं। ऋषियों में पहले शक्ति होती थी, वो भीख नहीं मांगा करते थे, लोग उनके पास जाके माथा टेकने के लिए, दे गो एंड बो डाउन टू द ऋषिज, वो ऋषि बाहर जाते नहीं थे, लोग आते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह, पहले ब्राह्मण लोगों के लिए कुछ घर में कुछ मांगने नहीं जाते थे, मांगने के बहाने लोगों के आध्यात्मिक सेवा करने के लिए जाते थे। क्या सेवा करते थे? घर में विवाह होता था तो ज्योतिष से उनके घर में कौन सा शुभ दिन है बताते थे, और विवाह आदि होता था तो वो जाके संकल्प संस्कार करते थे, कुछ वैद्य हुआ करते थे ब्राह्मण, कोई रोगी होता था उसका इलाज करते थे। ऐसे एक बार एक बहुत बड़ा ब्राह्मण ज्योतिषी चेतना महाप्रभु के घर में आया, और चेतना महाप्रभु ने ज्योतिषी को कहा, ज्योतिषी मुझे बताओ इससे पहले जन्म में मैं कौन था? ज्योतिषी ने, बड़ा होशियार ज्योतिषी था, बहुत एक्सपर्ट था, कैलकुलेशन लगाया, ध्यान किया, अरे ये तो सब ब्राह्मण ब्रह्मांड सब इसके अंदर जा रहे हैं। फिर देखा फिर बोला, तब चेतन महाप्रभु ने बोलो ना ज्योतिषी मैं कौन हूं? बोला आप तो भगवान पर ब्रह्म भगवान लगते हैं। बोला नहीं झूठ मत बोलो, मैं बताता हूं कौन था। चेतन महाप्रभु, पहले जन्म में मैं कावड़ बॉय था, मैं ग्वाला था, मैं गऊ की बहुत सेवा की, आई सर्व द काउज वेरी नाइसली, मैंने गाय की बहुत सेवा की, इसलिए अब मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया। चैतन्य महाप्रभु बोलते आल्सो राइट, लेकिन वो ज्योतिषी बोलता है, आप कुछ भी कहो लेकिन आप हो पर ब्रह्म भगवान। बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं। बोला आप कुछ भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको ब्राह्मण को भिक्षा दक्षिणा दी। तो पहले साधु ब्राह्मण ऐसे भिक्षा लेने नहीं आते थे, कुछ आपके घर के अंदर शिक्षा देने, आपके दुख दूर करने के लिए कोई न कोई साधन बताते आते थे। अभी तो भिखारी की तरह आते हैं कहां, ब्राह्मण अभी ब्राह्मण है ही नहीं है? इसलिए प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका तब ये कहा था, मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूं, आई हैव कम हियर टू मेक यू ब्राह्मण, आइए मैं आपको ब्राह्मण बनाता हूं शिक्षा देकर। कलो संभव सर्व सूदर, कल युग में सभी सूदर है, संस्कारात भवती द्विज, अगर शिक्षा दी जाएगी पवित्र किया जाएगा तो वो द्विज बनेगा, मतलब उसका दूसरा जन्म होगा। तो बात कर रहे थे क्या, कथा कहां चल रही थी, हरे कृष्णा, क्या कथा चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, भगवान श्री राम का पहला मित्र निषाद राज, निषाद की उत्पत्ति कहां से हुई ये बात कर रहे थे। और वेण के ऊपर फिर ऋषियों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाए, हुंकार कर दी, वेण महाराज मर गया, मर गया वेण महाराज। फिर ऋषियों को परेशानी हुई, राजा नहीं है, राजा नहीं है तो चोर डाकू आदमी को दुखी कर देंगे, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। इतने बड़े वैज्ञानिक थे ऋषि, देवर साइंटिस्ट, देवर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्होंने वेण महाराज के नीचे के भाग का, टांगों का मंथन किया, दे शेक, इतना जोर से शेक किया कि अधो भाग से उसके अंदर जो पाप की प्रवृत्ति थी, जो सिन परसोनिफाइड उसमें था, वो काला बाहर आदमी निकला, उसका नाम रखा निषाद। कहा जाओ जंगल में रहो, काम क्या है, बोला चोरी डाका, आयो उसको मारो लूटो, ये तुम्हारा काम। तो अभी भी भारत में निषाद नाम से एक जाति है जो जंगलों में रहती है, और उनका काम क्या है पता है, जाते हुए लोगों को रोक के लूटना, और लूटने के बाद फिर मारेंगे, पहले लूटेंगे फिर मारेंगे, लोग उनसे डरते हैं। तो मानो कोई स्कूटर पे जा रहा है, वो रोकेगा ना तो जरा घड़ी दे देगा, पर्स दे देगा, वो लेके जेब में रखेगा, फिर उसको दो तीन डंडे मारेगा। बोला ऐसे क्यों करते हो, पुलिस वाले ने पूछा भाई तुम उसको बाद में क्यों मारते हो, बोला मेहनत करके खाना चाहते हैं, मुफ्त का नहीं खाएंगे। कुछ मेहनत करनी चाहिए ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियां जब आती थी, कहती थी यशोदा को हमारे घर में माखन चुराता है, बोला इतना छोटा बच्चा है कितना खाता होगा, 3 साल का तो है कितना खाएगा, इतना खाएगा, दे दिया करो ना। तो एक गोपी ने कहा कन्हैया माखन खाओगे, बोला क्यों भीख मंगाऊं क्या, मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय है तुम्हारे को दूं। बोला फिर तुम चोरी क्यों करते है, बोला मेहनत करके खाता हूं। तो मेहनत करके खाना चाहिए। तो निषाद की उत्पत्ति ऐसे हुई। अब ये पहला भगवान राम जी का मित्र, भगवान राम को देखे तो दूर खड़े हो जाए, भगवान कहे आलिंगन करता, नहीं 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 मैं पापी हूं मैं अपराधी हूं। दूसरा भगवान राम को मित्र मिला तो सुग्रीव बाबा, सुग्रीव ये तो गिरिवासी, गिरी गिरी कहते हैं पर्वत, पर्वत पे रहने वाला, किष्कंधा में पर्वत के ऊपर रहते थे। कभी भारत जाओ तो किष्कंधा देखना, कभी रामायण सुनने आएंगे तो कथा बताएंगे। अब वो सुग्रीव भी भगवान से, राम से तो डरे लेकिन लक्ष्मण से बहुत दूर भागे। और तीसरा भगवान को एक मित्र मिला, विभीषण रावण का भाई। राम जी को तीनों मित्र ऐसे मिले जिनसे राम जी प्रेम से बात करना चाहे वो डर से दूर खड़े हो जाए। तो भगवान राम ने ये मन में विचार किया अब अवतार लूंगा ना जब, तो मित्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे मैं गले मिलूं, खाऊं साथ में, नाचूं साथ में, गाऊं साथ में, ये तो दूर भाग रहे हैं मुझसे, ऐसा मित्र क्या करूं। और भगवान राम जब दंडक अरण्य में से जा रहे थे तो ऋषियों ने देखा, दंडक अरण्य में जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि सीता कितने प्रेम के साथ, माँ सीता भगवान श्री राम की सेवा कर रही है। उनके हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, कहा कि हमें ऐसा मौका मिलता, इफ वी गेट सच चांस टू सर्व सुप्रीम लॉर्ड विथ लव सीता की तरह, तो हमारा कितना भाग्य होता। सबने रामचंद्र को प्रार्थना की, बोला एक नारी व्रत धारी, इस अवतार में तो मैं एक नारी व्रत धारी हूं, एक ही पत्नी को स्वीकार करूंगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन द्वापुर में आप सब लोग ऋषि बन जो है वहां गोपियां बन के आना, तब मैं आपके साथ प्रेम का व्यवहार करूंगा। इसलिए ऋषि गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां में एक गोपियों का दल है, उनको कहते हैं ऋषि गोपियां, ये दंडकारण्य के ऋषि थे। तो राम के अवतार में भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे मित्र चाहे और बहुत सारे प्रेम करने वाले माधुर्य रस के भक्तों का प्रेम बांटना चाहा। तो श्री कृष्ण अवतार में भगवान को द्वादश गोपाल मिले। गोपाल कैसे मिले? श्री धामा राधा रानी का भाई एक तरफ और कृष्ण दूसरे तरफ खेलते हैं, जो हारेगा दूसरे को कंधे पे उठाएगा, कृष्ण हार जाता है, श्री धामा जीत जाता है। श्री धामा बोलता है बैठो नीचे, तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठूंगा, तुम घोड़े बन जाओ, मुझे उठा के चलो। कृष्ण बोलता है नंद महाराज का बेटा हूं। बोला नंद महाराज का बेटा घर में होगा, खेलना हो तो मेरे को कंधे में उठाओ, नहीं तो तुम्हारे खेल से बाहर निकालते। कृष्ण वी कैनॉट प्ले यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। कृष्ण बोलता ठीक है ठीक है, श्री धामा तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। कृष्ण को ऐसा मित्र चाहिए। कृष्ण यहाँ खा रहे हैं भोजन, यहाँ पहुंचा है वो मधुमंगल, बोलता है क्यों क्यों पहले खाते हो, ब्राह्मण को दो पहले लड्डू, मैं खाऊंगा। भगवान के मुंह से लेके खा जाता है, भगवान के मुंह से निकाल के खा जाता है लड्डू। ऐसा मित्र भगवान को चाहिए। एक बार चोरी करने गए थे किसी गोपी के घर में मक्खन दही दूध। गोपी चिकसोली एक गांव है, चिकसोली गांव का नाम क्या है, चिकसोली कहाँ है, चिकसोली गांव बरसाने में है, बरसाने की परिक्रमा में जाएंगे तो पीछे चिकसोली गांव आता है, वहां दूध दही बहुत होता है और पर्वतों के बीच में इतना रास्ता है एक आदमी चल सकता है, उसको दान घाटी कहते हैं। वहां गोपाल कृष्ण और गोप खड़े होते थे, जब गोपियां वहां से दूध दही ले जाती थी ना तो बोलते थे दान दो, दान घाटी उसका नाम है, नहीं तो मटकी फोड़ेंगे। तो चिकसोली में एक बार चोरी करने गए, गोपियां बड़ी होशियार थी, अंदर ये कमरे में गए, बाहर से कुंडी लगा दी, चुप बंद हो गया। अरे अब क्या करें, भागो खिड़की से, सब लोग ऊपर कूदे खिड़की से भागे। ये बेचारा ब्राह्मण लड्डू बहुत खाता था, मधुमंगल खिड़की में अटक गया, सब भाग गए, ये अटक गया, गोपियों ने पकड़ लिया, मधुमंगल को पकड़ के बना लिया हॉस्टेज। किसी आदमी से कुछ लेना होता ना, किसी के बच्चे को कोई लेके जाते हैं, फिर फोन कराते हैं इतना पैसा दो बच्चा ले जाओ, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हॉस्टेज, किडनैपिंग। हरे कृष्णा, किडनैपिंग किसे मानो, ऐसे ही समझ लो। अब मधुमंगल पकड़ा गया गोपियों के द्वारा, गोपी ने पता है क्या किया, मधुमंगल की चोटी खोली, चोटी में रस्सी बांधी, रोप, रस्सी को पेड़ के ऊपर से फेंका दूसरी तरफ और उधर से रस्सी को ऐसे खींचे मधुमंगल की चोटी ऊपर जाए और खींचे खींचे, ओ कन्हैया, फिर छोड़े, फिर वो सिर नीचे हो, फिर वो चोटी खींचे। अब कन्हैया ऐसे बुलाए, कृष्ण भागते हुए आए, गोपियों को बोलते तुम पहचानती नहीं हो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को तुम सता रहे हो, तुम्हारे को बूढ़ा पति मिलेगा, बूढ़ा। अब तुमको पति मिलेगा नहीं मिलेगा तो बूढ़ा मिलेगा, 80 साल का। गोपियां बोलती नहीं ऐसे मत करो, कुछ कृपा करो। बोला कृपा करो तो ये खुश इसको करो, और ब्राह्मण को खुश कैसे करो, लड्डू खिलाओ खुश हो जाए, ब्राह्मण को लड्डू खिलाओ, बस हो गया। तो कभी आप जाएंगे चिकसोली गांव से ऊपर आएंगे तो एक बहुत बड़ा ग्वाल तालाब है, उसके ऊपर एक सिंहासन है, उसके ऊपर बिठा के मधुमंगल को गोपियों ने लड्डू खिलाए। तो ऐसे मित्र भगवान श्री कृष्ण को मिले, जिनके साथ बड़ा भगवान ने प्रेम का रसास्वादन किया। और गोपियों के माधुर्य प्रेम में अनंत कोटि गोपियों के दल थे जो भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करते थे, और उन प्रेम करने वालों में भी एक गोपी सर्वश्रेष्ठ थी, श्री राधिका। तो कृष्ण अवतार में आकर भगवान श्री कृष्ण को एक और लालसा हो गई, एक लालच हो गई। जैसे राम जी को मित्रों की, नरसिंहदेव को माता पिता का भाव था, श्री कृष्ण को एक और लालसा हो गई। ही डेवलप ए डीप डिजायर। वो डिजायर पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कौन सी डिजायर है? इसके लिए चेतन चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, अपने कभी पढ़ेंगे तो, पहले 14 श्लोक लिखे हैं संस्कृत में, 14 वर्सेस। पहले श्लोक में भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम किया है। ईश भक्तान, भगवान के भक्त अनंत कोटि वैष्णव वृंद का पहले कृपा प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मेरी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना मेरे भक्तों की पूजा से प्रसन्न होता हूं। आई एम नॉट रियली फीलिंग हैप्पी व्हेन समबडी वर्शिप मी। आई फील ग्रेट प्लेजर व्हेन समबडी वर्शिप एंड गिव रेस्पेक्ट टू माय डिवोटी। मेरे भक्त की सेवा करने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है भागवत में और अन्य स्थानों के ऊपर। और कविराज गोस्वामी ये जानते हैं, इनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई थी। कटवा गांव से परिवार से कुछ झगड़ा हुआ तो रात को नित्यानंद प्रभु ने कहा, निकलो यहां से, चलो वृंदावन। बहुत बड़ी अवस्था में, ओल्ड एज में वृंदावन आके रहे थे, बड़े भाग्यशाली थे, उनको रूप गोस्वामी का संग मिला था, रघुनाथ दास गोस्वामी का संग मिला था। कविराज गोस्वामी की उम्र 80 साल के करीब होगी। उस वक्त सब वैष्णवों ने उनको कहा, आप चेतन, आप कविराज हैं। कविराज का मतलब पोएट, उपाधि दी गई थी कविराज। आप चेतन महाप्रभु की जो लीलाओं का प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी 4 घंटे प्रवचन करते हैं, 4 hours एवरी डे रघुनाथ दास गोस्वामी यूज टू स्पीक चैतन्य लीला। सब वैष्णव ने कहा कि आप कृपा करके ये लिखिए। एक एक वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके कविराज गोस्वामी कहते, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप कृपा करो तो मैं लिखूंगा। और ओल्ड एज में मास्टरपीस ये चेतन चरितमृत कविराज गोस्वामी का ये बहुत बड़ा चमत्कारी ग्रंथ है, जिसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा था, जो वैष्णव भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसको बंगाली सीखना पड़ेगा, इसलिए कि चेतन चरितमृत का रस आस्वादन करने के लिए बंगाली आना चाहिए। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहीं से प्रवचन दे के बाहर निकले तो बाहर पुस्तक पड़े थे और मिठाई सेल कर रहे थे, तो रसगुल्ले बंगाल के थे। बंगाल रसगुल्ले में बंगाली मिठाई बोलते हैं, संदेश रसगुल्ला। किसी ने कहा, श्रील प्रभुपाद ये बंगाली स्वीट। प्रभुपाद ने देखा और फिर चेतन चरित मत को उठाया, बोला दिस इज बंगाली स्वीट। चेतन चरितमृत इज बंगाली स्वीट। ये मीठा बंगाली रस है चेतन महाप्रभु, जो कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है, ये रस है, ये असली रस है। तो कविराज गोस्वामी ने पहले प्रणाम किया है गुरुन, एक गुरु नहीं, प्लूरल में गुरु है। प्लूरल गुरु का मतलब क्या? मेरा गुरु और पूरी गुरु परंपरा, सारी गुरु परंपरा को प्रणाम किया है प्लूरल में। पहला श्लोक गुरुओं को प्रणाम किया है। ये पहले श्लोक के शब्द सुन लीजिए, 14 श्लोक, और फिर 14 श्लोकों के बाद, क्योंकि वृंदावन में रहते थे और वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव के प्रिय 3 ठाकुर जी हैं, 3 भगवान के सुंदर श्री विग्रह है वृंदावन में, जो गौड़ीय वैष्णव को हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। 15वां श्लोक में मदन मोहन को प्रार्थना किए, संबंध के ठाकुर मदन मोहन जी को। 16वें श्लोक में गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ को प्रार्थना किए, जो अभिधेय के आचार्य हैं। और 17वें श्लोक में, 17th verse में गोपीनाथ को आशीर्वाद के लिए कहा है कि सबके ऊपर कृपा करो, कृष्ण प्रेम दो। और इन 17 श्लोक को फिर, ये संस्कृत में 17 श्लोक है, इन 17 श्लोक के विस्तार में पूरा चैतन्य चरित में थे। तो पहला श्लोक क्या है, वंदे गुरुन ईश भक्तान, मैं प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं गुरुओं को, परंपरा को और भगवान के भक्तों को, अनंत कोटि वैष्णव वृंद को, भक्तों को प्रणाम करता हूं। ईशम, भगवान को प्रणाम करता हूं। ईश अवतार कान, जो भगवान के अवतार है उन सबको प्रणाम करता हूं। तत प्रकाशम, और उनके जो प्रकाश विग्रह है उनका, उनको प्रणाम करता हूं। तशक्ति ही, जो उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, उसको प्रणाम करता हूं। और ये सब किसके हैं, कृष्ण चैतन्य संगनिकम, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो गुरुन के रूपों में, परंपरा के रूप में, भक्त के रूप में, भक्त के अवतार के रूप में, भक्त के प्रकाश के रूप में और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये पहला श्लोक है और पहला अध्याय केवल इस श्लोक को समझाने के लिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को प्रणाम करता हूं। कैसे हैं दोनों, कैसे हैं दोनों, सहोदितो पुष्पवंतो नित्य सदो, सूर्य और चंद्रमा की तरह है दोनों। सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। ये दोनों एक ही समय गौड़ देश में प्रकट हुए हैं, क्या करने के लिए, चित्रो छंदो तमो नुद्दो, चित्त के ऊपर जो अंधकार है, बाहर का सूर्य और कृष्ण उदय होता है, सूर्य और चंद्रमा उदय होता है तो अंधकार चला जाता है ना। सुबह सूर्य उदय हो जाएगा दिन हो जाएगा, रात को चंद्रमा होगा तो चांदनी हो जाएगी, ये बाहर का अंधकार गया। चैतन्य कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद हृदय के अंदर अंधकार को दूर करने के लिए अवतार लिया। ये 14 श्लोकों के बाद इसमें अपन आज थोड़ी देर के लिए चैतन्य महाप्रभु के बाहर अवतार लेने के कारण क्या थे, क्यों अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के, उसके एक्सटर्नल कारण क्या है और इंटरनल कारण क्या है, आज एक्सटर्नल कारण के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं इंटरनल कारण तक अभी आपको हम ले गए थे कि गोपियों राधा के प्रेम से कृष्ण इतना प्रभावित हुआ कि कृष्ण के मन में ये भाव आया कि राधा को क्या सुख मिलता है मुझसे प्रेम करके, व्हाट प्लेजर शी इज गेटिंग, क्या सुख मिलता है राधा को, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं, मुझ में ऐसी क्या चीज है जो राधा मेरे अलावा रह नहीं सकती है, मुझ में है क्या, व्हाट इज इन मी स्पेशल, आई डोंट नो। कृष्ण कहते मुझे मालूम नहीं है मुझ में क्या है कि राधा मुझे चाहती है। इन भावों को मैं राधा ही बनूंगा तो समझ पाऊंगा, नहीं तो समझ नहीं पाऊंगा। तो बाहर कारण क्या है सुन लीजिए, गुरु आएगा तो क्या करेगा हमारे को, गुरु से हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, पहले एक लाइन सुन लीजिए, गुरु से क्या सीखना चाहिए, तत्व वस्तु, गुरु से तत्व वस्तु सीखनी चाहिए, मीन्स द गोल ऑफ लाइफ, द सेंस क्या है, तत्व वस्तु क्या है, कृष्ण, तत्व वस्तु कृष्ण है। ये तीन चीजें, कृष्ण, कृष्ण की पूजा और कृष्ण नाम संकीर्तन, ओनली दीज थ्री थिंग्स इज एसेंस ऑफ एवरीथिंग. कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा और कृष्ण कीर्तन, इफ वी डू दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. ओनली थ्री थिंग्स, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, प्रेम रूप, नाम संकीर्तन, सब आनंद स्वरूप. गुरु ये सिखाएगा. क्या सिखाएगा गुरु से? क्या सीखना चाहिए? The absolute truth is Sri Krishna. Tattva Sri Krishna. And loving devotion to Sri Krishna exhibited in pure love. Bhagavan Sri Krishna ki bhakti Krishna prem mein prakat honi chahiye. Kaise prapt hoga? There is achieved through congregational chanting of the holy name. Harinam Sankirtan se prapt hoga. Which is the essence of all bliss. Param Anand ka wohi saar hai. अभी आपको जो बताया था मैंने, सूर्य चंद्र बाहर प्रकाश करते हैं नित्यानंद, और चैतन्य अंदर का प्रकाश करते हैं. दुई भाई हृदय काशी अंधकार, दुई भागवत संगे करण साक्षात्कार. सूर्य और चंद्र बाहर का अंधकार करते हैं, ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करेंगे. कैसे कैसे दूर करेंगे? भागवत संग करान साक्षात्कार. कौन सा भागवत? एक भागवत बड़ भागवत और शास्त्र. चेतना महाप्रभु के लिए एक कहावत है, लिखा है. चेतना महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? आराध्यम ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम. आपको आराधना करनी है, भक्ति करनी है, ब्रजेश तन्यम ब्रजराज नंद के बेटे कृष्ण की करो. तदधाम वृंदावनम, कहां कृष्ण की भक्ति करो? बोले जैसे वृंदावन में की जाती है. किससे सीखे? ब्रज वधु वर्गेणा कल्पिता, जैसे ब्रज की गोपियों ने की. कहां से पता लगेगा इसका? भाग श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम, ये पता मिलेगा श्रीमद भागवत स्पॉटलेस पुराण से. और प्राप्त क्या होगा? प्रेम पुरुषार्थ पंचम. ये मतम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मत ये. दिस इज द टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु. कृष्ण की भक्ति व्रज के भाव में जैसे गोपियों ने की थी, और ये भागवत से प्राप्त होगी. इसलिए यहां गुरु क्या सिखाएगा? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक तो भागवत महापुराण, और दूसरा और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र. दूसरा भागवत जो भक्ति के रस में डूबा हुआ भागवत पुरुष है, जैसे श्रील प्रभुपाद भागवत पुरुष है, जिसका जीवन भागवतमय हो जाता है. किसी ने कहा दोनों भागवतों में मुख्य भागवत कौन है? विच इज मोस्ट, दोनों भागवत महान है, भागवत ग्रंथ और भागवत पुरुष, लेकिन दोनों में से एक भक्त ने कहा भागवत पुरुष अच्छा है, भागवत पुरुष ज्यादा है. भाई क्यों? बोला भागवत पुरुष प्रसाद भी देता है. भाई भागवत पुरुष प्रसाद भी देता है. एंड प्रभुपाद वॉज गिविंग प्रसाद. Always are keeping prasad with him and always distributing prasad. So भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ दोनों पवित्र करते हैं, लेकिन भागवत पुरुष और अधिक महत्वपूर्ण है. वो चल के आपके घर का चला आएगा, लेकिन भागवत आपके घर चल के नहीं आएगा, प्रसाद देगा, चल के आएगा, बताएगा, सिखाएगा. तो भागवत पुरुष का संग और भागवत का संग करना चाहिए. दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दोनों भागवत शास्त्र और भागवत भक्त के द्वारा भक्ति का रस दिया. किसने? गुरुजनों ने, परंपरा ने. तहार हृदय तहार प्रेम है वश, और जिसने ये भक्ति का रस पिया कृष्ण उसके बस में है. बस में मीन्स ही इज, कृष्ण इज कंट्रोल्ड बाय डिवोशनल मेलोस. ये लिखा है एक अद्भुत समकाले द्वार प्रकाश, ये तो आश्चर्य है कि दोनों एक ही वक्त में प्रकट हुए। वैसे भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले ना कहा था ब्रह्मा जी को, सब देवताओं को बोलो कि जाके यदुवंश में प्रकट हो जाएं, मेरी लीला में सहायता करें, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेने से पहले जगन्नाथ मिश्रा को भेज दिया, सची माता को भेज दिया, अद्वैत आचार्य को भेज दिया, नित्यानंद प्रभु को भेज दिया, श्रीवास श्रीपति श्रीनिधि आदि चार भाइयों को भेज दिया, परमानंदपुरी को भेज दिया, मुरारी गुप्ता को भेज दिया, जिन भक्तों के संग महाप्रभु को लीला करनी थी उनको पहले भेज दिया, उनसे वो पहले आ गए थे। ये सात भाई थे जगन्नाथ मिश्रा थे, ये पांचवा नंबर का था, ये श्रीहट को छोड़ के और नवदीप में आके रहे थे, और इनकी कला कथा कल करेंगे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के दिन के ऊपर कैसे उनका प्रकट्य हुआ। यहां पढ़ते हैं अब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य के बाहर के कारण क्या है, ये दो मिनट सुन लीजिए। श्री कृष्ण ने बैठ के विचार किया, अवतार लिया, भूमि का भार समाप्त किया, भगवद गीता की शिक्षा दिया और श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। और तब श्री कृष्ण अपने धाम में क्या सोच रहे हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान। चिरकाल बहुत समय से, चिरकाल मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, नाही करी प्रेम भक्ति दान, मैंने प्रेम भक्ति का दान बहुत समय से नहीं किया है। कृष्ण वॉज थिंकिंग आई हैव नॉट For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me. मैंने अपनी प्रेम भक्ति नहीं सिखाई है। भक्ति बिना जगते जगतेर नहीं अवसाधन, दुनिया का उधार भक्ति के बगैर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको सीख लीजिए, देख लीजिए। श्री कृष्ण बलराम की, दोनों बिलू पहन के आए हैं। थोड़ी देर सुनेंगे कथा के कीर्तन करेंगे। अब कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं बहुत समय से मैंने भक्ति, मेरी अपना प्रेम भक्ति नहीं दिया है, प्रेम भक्ति के बगैर जगत का उद्धार नहीं होगा। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, सारी दुनिया मेरी भक्ति करती है, कैसी, दो अगरबत्ती लाती है, एक केला लाती है, टेबल के ऊपर रखती है और चले जाती, रुपया आते हैं पेटी में डालते हैं, पहले जेब से पर्स निकालते हैं, बड़े नोटों को अलग करते हैं, छोटे से छोटा नोट ढूंढते हैं वो अंदर डालते हैं। अरे भगवान को देना है तो सबसे बड़े से बड़ी चीज होने वो नहीं चाहिए ना, बड़े से बड़ी चीज, लेकिन हम छोटे से छोटा और गले से गला जो बाजार में नहीं चलेगा वो इस डब्बे में डालते। फिर भी हमको डर है इसलिए हमने इसको ताला लगा के रखा है। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भावे पायते नहीं शक्ति। ये जो भक्ति है जो मंदिरों में लोग करते हैं दुनिया वाले, इस भक्ति से ब्रज के भाव वाली भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण ये बात कर रहे हैं। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल वर्शिप मी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन बट सिंपली बाय फॉलोइंग सच रेगुलेटिव प्रिंसिपल वन कैनॉट अटेन लविंग सेंटीमेंट ऑफ डिवोटीज इन ब्रज भूमि। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सब लोग कहते गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर मतलब गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। बोला ऐसे करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। नोइंग माय ऑपुलेंस द होल वर्ल्ड लुक्स अपॉन मी विथ एवर वेनरेशन बट डिवोशन मेड फीबल by such reverence does not attract me. I am not attracted by this. God is great. Over there, तो great हूँ तुम्हें क्या? I am great, so why you are worried? जाओ अपने घर, क्या चाहिए? दुकान चलना चाहिए, चलो जाओ, दुकान चलेगा, जान छोड़ो हमारी। अब आगे क्या कहते हैं? अगर ऐश्वर्य से भजन करो तो कहां तक पहुंचोगे? ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठे याए चतुर्विध मुक्ति पाए। तो वैकुंठ में जाओगे, चार प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि चेतन महाप्रभु की शिक्षा में मुक्ति को कोई महत्व नहीं है। मुक्ति हैज नो सिग्निफिकेंस। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत। मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है भक्त के, कि आपकी सेवा क्या करनी है मुझे। बोले नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। मुक्ति नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। जन्मनि जन्म का मतलब मुक्ति नहीं चाहिए। मैं वापस आऊंगा, लेकिन मुझे क्या देना? भवताद भक्ति अहि तुकी त्वई। ये महाप्रभु की विशेषता है। तब कहते हैं उससे तो चार प्रकार की मिलेगी मुक्ति। युग धर्म परवर्तायमु नाम संकीर्तन। ये मुख्य कारण है चेतना महाप्रभु के अवतार का। श्री कृष्ण बैठ के गोलोक में ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? युग धर्म, इस युग का धर्म, कलयुग का धर्म क्या है? हरिहर नाम, हरिहर नाम, हरिहर नाम एव केवलम। और ये प्रवर्तायमु, इसका प्रचार करने के लिए, नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, चारी भाव भक्ति दिया। मैं चार भक्ति के भाव दूंगा। कौन से? सख्या, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य। शांत भाव चेतना महाप्रभु की लाइन में नहीं है। There are five mellows, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और सख्य। शांत नहीं है हमारे पास। चारी, चारी भाव भक्ति दिया। क्या करोगे भक्ति देके महाराज? नाचाई मु भुवन, पूरी दुनिया को नचाऊंगा। प्रेम में सब नाचेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब नाचेंगे। आपनी, बोला कैसे नाचेंगे? तब कहेंगे आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकार। मैं स्वयं भक्त के भाव को अंगीकार करके, आई विल एक्सेप्ट दी रोल ऑफ डिवोटी। आपने आचार्य भक्ति सिखाए मु सबारे। मैं आचार्य बन के जाऊंगा, मैं स्वयं भक्ति करके दूसरों को सिखाऊंगा। ये आचार्य का स्थान है कि कृष्ण कहते हैं मैं भक्त बन के जाऊंगा और मेरे अपने आचरण से आई विल प्रैक्टिस इट एंड देन प्रीच। पहले मैं स्वयं आचार करूंगा और फिर प्रचार करूंगा। आपने ना कैले धर्म सिखाए ना याय, एते सिद्धांत गीता भागवत गाय। गीता और भागवत क्या सिद्धांत कहती है? अनलेस वन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस हिमसेल्फ, ही कैन नॉट टीच इट टू अदर्स। इसलिए बहुत से लोग अच्छा प्रवचन कर सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बना सकते, क्योंकि स्वयं भक्ति नहीं करते। हजारों लाखों भारत से लोग गए थे अमेरिका में योगा सिखाने के लिए, लेकिन भक्त नहीं बना पाए। क्यों? स्वयं भक्ति नहीं करते थे। चेतना महाप्रभु की कृपा का प्रसाद लेके जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका में 70 साल में, आप कभी सुनिए अंग्रेजी बोलते हैं तो बंगाली, इतना बंगाली उसमें एसेंस है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन शुद्ध हृदय से अपने आचरण जो उनका था भक्ति का, और नौजवान 17-16 साल से लेकर 30 साल की आयु के लड़के नौजवान सारे भक्त बन गए, बूढ़ा कोई भी नहीं था। एक ही सारे सब में बूढ़ा स्वयं श्रील प्रभुपाद वाज दी ओल्डेस्ट पर्सन, बाकी सब 16 साल और 25-30 साल का तो कोई था ही नहीं, मैक्सिमम ये 27-28 साल तक था। एंड ही चेंज ऑल ऑफ देम, व्हाई? बिकॉज ही वाज प्रैक्टिसिंग इट, ही वाज प्रैक्टिसिंग इट। जब तक हम स्वयं जप नहीं करेंगे, दूसरों को जप कराने की शिक्षा नहीं दे सकते, ये यहां बताया जा रहा है। और फिर भगवत गीता से बताया है, यद यद आचरति, स्वयं आचरण नहीं करेगा तो दूसरे को कैसे सिखाएगा? पहले स्वयं आचरण करेगा तब दूसरा सीखेगा। तो ये भागवत से दो श्लोक भगवत गीता से देकर फिर कहते, युग धर्म परवर्तन है अंश हैते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीता। बोला मारे जो अंश अवतार जाते हैं ना, विष्णु आदि जब जाते हैं ना, ये बाकी सब काम कर लेते हैं, असुरों को मार लेते हैं, धर्म को स्थापन कर सकते हैं, लेकिन मेरे जाने के बिना, अम्मा बिना अन्य मेरे जाने के बगैर, कृष्ण कह रहे हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ब्रज का प्रेम कौन देगा? इसका अर्थ है विष्णु ब्रज प्रेम नहीं दे सकते हैं। माय प्लेनरी पोर्शन कैन एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन फॉर ईच एज, नो वन बट मी हाउ एवर कैन बेस्ट ऑफ काइंड ऑफ लविंग सर्विस परफॉर्म बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ब्रज। बाकी अवतार धर्म की स्थापना तो करेंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम में खुद कृष्ण जाऊंगा तो दूंगा, और कोई नहीं दे सकता। तहाते अपन भक्त गण करी संगे, इसलिए मैं अपने भक्तों को संग लेकर, पृथ्वी ते अवतारी करीमु नाना रंगे, मैं अवतार लेके पृथ्वी के ऊपर जाऊंगा अपने भक्तों को संग लेकर। तो पहला भक्त कौन संग ले जाओगे? नित्यानंद प्रभु बलराम जी को ले जाऊंगा, फिर विष्णु को ले जाऊंगा, सदाशिव को, अद्वैत आचार्य को ले जाऊंगा, फिर अपनी शक्ति को, राधा रानी को ले जाऊंगा गदाधर के रूप में, फिर नारद जी को ले जाऊंगा श्रीवास के रूप में, और फिर जितने भी परिकर मेरे हैं उन सबको साथ ले जाऊंगा। और हर एक का परिचय है कि वो पहले क्या था कृष्ण लीला में। अब ये कह रहे हैं चेतना, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तो मैं देयरफॉर इन द कंपनी ऑफ माय डिवोटीज आई शैल अपीयर ऑन अर्थ एंड परफॉर्म वेरियस कलरफुल पास्टाइम्स। एते भावे कली काले प्रथम संध्याए अवतारेण हैला कृष्ण आपने नाद्याए। ये भाव लेकर भगवान श्री गोलोक में कहते हैं, कलयुग के पहले चरण में नाद्या में मैं अवतार लूंगा। चैतन्या, अब कैसा है ये, कैसा होगा अवतारी? चैतन्या सिंहेरा नवदीपे अवतारे सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेरा हुंकार। कैसा है चैतन्य महाप्रभु? सिंह कहते हैं लाइन को। दस द लॉइन लाइक लॉर्ड चैतन्य हैज अपियर्ड इन नवदीप, ही हैज शोल्डर ऑफ ए लॉइन, पावर ऑफ लॉइन एंड द लाउड वॉइस ऑफ ए लॉइन। से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कलमश द्वेरद नास यहार हुंकारे। May that line be seated in the core of the heart of every living being. Thus with his resounding roar may he drive away one's elephantine vices. तो ये सिंह चेतना महाप्रभु हमारे हृदय में जो पाप अपराध रूपी चीजें हैं इसको भगा के बाहर, जैसे 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 शेर जब धारेगा ना, हाँ, when the lions जब, हाँ, what क्या कहते हैं lions को, lion is शेर के धार को क्या बोलते हैं? Roaring of a lion get all the animals to run away. So all the animalistic propensity which is on our heart, when Chaitanya Mahaprabhu enters in the heart of the devotee, and by his roaring of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, all the animalistic propensity, kaam, krodh, lobh, moh, matsar, they just run away. That's what the purpose is. Aur phir likha hai, Chaitanya Mahaprabhu have two, first part he will stay in a house, as a householder, pehle ghar mein rahenge, grahast ki sankirtan andolan shuru karenge, aur phir shesh bhag mein sanyas lenge, aur phir pure bharat mein bhraman karke prachar karenge. और फिर आगे कहते हैं इसलिए गर्ग आचार्य ने कृष्ण के नाम देने के समय चैतन्य महाप्रभु का भी नाम दे दिया था। क्या कहा था गर्ग आचार्य ने, हर युग में लाल सफेद और पीले रंग में अवतार होते हैं भगवान। अब कृष्ण सांवले रंग में आए हैं, कल युग में पीत वर्ण गौर वर्ण में आएंगे येलो कलर में। और विष्णु सहस्र नाम में महाभारत में विष्णु का एक नाम है सन्यास लेगा, गेड़ू वस्त्र पहनेगा। और ये विष्णु सहस्र नामों में एक नाम सन्यासी जो विष्णु का है वो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा किया है सन्यास लेकर। तो ये यहां लिखा है कि ऐसे उनके दो जीवन के भाग होंगे। और ये गर्ग आचार्य ने नाम दिया है। और इसके बाद है कलि युगे युग धर्म नामेर प्रचार, तिथि लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। नाम संकीर्तन के लिए पीला कलर, येलो कलर में, गोल्डन कलर में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। क्या करेंगे आके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहना और कैसा उनका रूप होगा, तप्त हेम सम कांति, तप्त हेम सम कांति, मोल्टन गोल्ड, तप्त पिघला हुआ, हेम सोना, हेम कहते हैं सोने को, पिघले हुए सोने जैसा उनका रंग होगा। तप श्री कृष्ण बलराम की, तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। इसके बाद वो कुछ लक्षण है जो एक भगवान के अवतार में होते हैं, कितना उनका शरीर लंबा होगा, कैसा उनका रंग होगा, कैसी उनकी नाभि होगी, इसका पूरा वर्णन गर्गाचार्य ने लिखा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के बाहर के कारण है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कल चर्चा करेंगे अंतरंग कारण के लिए। तो राधा तत्व क्या है, राधा भाव क्या है, और चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कैसे आए और उन्होंने क्या कार्य किया, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। श्री गौरंग महाप्रभु की, गौर पूर्ण महा महोत्सव की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।